हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अमन आंशी को घर छोड़ने के लिए आया हुआ था। उसने आंशी के घर के बाहर रॉबिन की गाड़ी देखी तो वो उसे छोड़ने अंदर तक आ गया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा रॉबिन और मेलिसा मिस्टर जिंदल के साथ बैठे थे। वहाँ उनके साथ प्रीतो जी भी थीं। उन सबको देखकर आंशी घबरा गई और उसने अमन का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों को एक साथ देखकर मेलिसा के चेहरे पर मुस्कराहट थी। वो देखो, हमारे लव बर्ड्स भी आ गए। तुम दोनों तो बहुत डरपोक निकले। शादी तो हो गई, फिर भी घर वालों को नहीं बताया। मेलिसा उनके पास गई और आंशी का हाथ पकड़कर उसे शिव के सामने लाने लगी। शिव ने अमन और आंशी को एक साथ देखा तो उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो उन दोनों को कुछ कह पाते उससे पहले रॉबिन बीच में बोल पड़ा। बस भी कर यार, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा तुम मॉडर्न थिंकिंग का है और यहाँ तेरी बेटी तुझसे डरकर रह रही है। अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली फिर भी तुम्हें बताने से हिचकिचा रही है। ये सब ये क्या कह रहा है आंशी? ये तो तुम्हारा बॉस है ना, और तुम दोनों ने शादी कब की? मिस्टर जिंदल ने सख्त आवाज में पूछा। वो पापा, हमने शादी, आंशी सब कुछ बताते हुए डर रही थी। तभी रॉबिन ने कहा, आंशी बेटा इतना क्यों घबरा रही रहो? रुको, ये कुछ करे उससे पहले तुम दोनों इन पेपर पर साइन कर दो ताकि इसे कुछ करने का मौका ही ना मिले। रॉबिन के कहते ही मेलिसा ने कुछ पेपर्स उसके हाथ में पकड़ाए। रॉबिन ने पेन निकालकर अमन की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम दोनों के मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर हैं। मुझे लगा भी था कि तुम दोनों को दिक्कत आएगी। तुम दोनों इन पर साइन कर दो, इससे लीगली तुम दोनों की मैरिज रजिस्टर हो जाएगी और ये फिर प्यार के दुश्मन तुम्हें अलग नहीं कर पाएंगे। रॉबिन ने जबरदस्ती अमन के हाथ में पेन पकड़ा दिया। अमन ने उन पेपर पर साइन नहीं किया। वो उन्हें लेकर खड़ा था। मिस्टर जिंदल उसकी तरफ घूर कर देख रहे थे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मिस्टर जिंदल, अमन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। शिव उसकी बात काटकर तेज आवाज में बोले, अब कुछ भी समझने समझाने को बाकी ही क्या रह गया है? क्या यही वजह थी कि तुम वापस पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना चाहती थी? मैंने कहाँ कमी रखी जो तुमने मेरे साथ ये किया आंशी? किसी और को ना सही, एक बार मुझे ही बता देती बच्चे। मुझे पहले पता होता तो मैं ही इसे मना लेती, प्रीतो जी बोली। चलो अब उसे डांटना बंद करो और तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो, इस पर साइन करो। शिव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा से पता है इसे कैसे समझाना है, रॉबिन ने कहा। उसने इशारे से शिव जिंदल की तरफ देखा। ठीक है, अगर तुम दोनों ने शादी कर ही ली है तो अच्छी बात है। तुम दोनों को तुम्हारी शादी मुबारक हो। चुपचाप इन पेपर पर साइन करो और मेरे घर से निकलो। शादी के बाद तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो, इसी के साथ जाओ ना, शिव ने गुस्से में आंशी से कहा। उन्होंने जबरदस्ती अमन और आंशी से उन पेपर पर साइन करवा लिए और फिर गुस्से में अंदर चले गए। आंशी वहाँ बाहर खड़ी होकर रो रही थी। वो मिस्टर जिंदल के पीछे पीछे उनके कमरे में गई। आंशी प्लीज, मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, तुम बाहर चली जाओ, उसके कुछ कहने से पहले ही शिव ने गुस्से में कहा। मुझे एक बार समझाने का मौका तो दीजिए पापा, आंशी रोते हुए बोली। उन दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले अमन कमरे में आ गया। उसने आंशी का हाथ पकड़ा और शिव जिंदल से नरमी से कहा, हमने जो भी किया उससे आपका गुस्सा होना जायज है। हम दोनों ने गलत किया है, पर आपको हमें समझना होगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई प्रॉमिस मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा। शौक से रखो, पर फिलहाल के लिए मेरी नजरों से तुम दोनों दूर हो जाओ। अगर ऐसा कुछ किया भी था तो आकर मुझे बता देते। मुझे इन लोगों से पता चल रहा है कि मेरी बेटी ने शादी कर ली, शिव जिंदल ने जवाब दिया। चलो चलो, बहुत हो गया डांटना, अब दोनों बच्चे बाहर आ जाओ, रॉबिन ने उन्हें आवाज लगाई। वो अंदर आया और जबरदस्ती शिव को बाहर ले गया। उनके पीछे अमन और आंशी भी थे। तुम दोनों की शादी तो कल ही हो गई थी, फिर दोनों शादी के बाद कहाँ गए थे? आंशी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है और वो शादी का जोड़ा? मेलिसा ने पूछा। वो मेरे पास है, शादी का जोड़ा गाड़ी में रखा हुआ है, अमन ने बताया। कल रात जल्दबाजी में उसने सारा सामान वहीं गाड़ी के ट्रक में ही छोड़ दिया था। हाँ तो लेकर आओ, इस घर की बेटी की विदाई ऐसे ही थोड़ी ना होगी। तुम्हें भी तो आगे जाकर अपने घर वालों को सब सच बताना होगा। तुम कहो तो हम तुम्हारे साथ चलें। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर वाले काफी अंडरस्टैंडिंग है। अमन रॉबिन और मेलिसा को अपने घर से दूर रखना चाहता था। ऐसे में आंशी को वहाँ से ले जाना ही उसके पास एकमात्र रास्ता बचा था। अंदर अमन ने शिव के सामने जो भी कहा था उसके बाद आंशी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रॉबिन और मेलिसा का सच जानने के बाद वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अमन की बात सुनकर रॉबिन ने कहा, देखो, तुम्हारा दामाद तुम्हें टॉन्ट मार रहा है कि इसके घर वाले समझदार हैं। तुम्हें भी समझदार बनना चाहिए। अपनी बेटी को प्यार से विदा करो। दूल्हे राजा, तुम ऐसा करो, जाकर आंशी की शादी का जोड़ा ले आओ और साथ में मंगलसूत्र भी। अमन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो गाड़ी में से आंशी की शादी का जोड़ा लेकर आया। कुछ ही देर में आंशी वापस दुल्हन की तरह सजकर तैयार थी। अरे, इसकी सुनी सुनी मांग अच्छी नहीं लग रही है। तुम ऐसा करो, इसमें सिंदूर लगा दो और साथ में मंगलसूत्र भी पहना दो, ताकि तुम्हारे ससुर जी को यकीन हो जाए सच में शादी हो गई है, रॉबिन ने कहा। उसने मेलिसा की तरफ इशारा किया। उसका इशारा समझकर वो मंदिर की तरफ गई और वहां रखा सिंदूर लाकर अमन के पास खड़ी हो गई। कुछ भी करने से पहले अमन ने शिव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अमन ने आंशी को मंगलसूत्र पहना दिया और मांग में सिंदूर लगा दिया। चलो, अब प्यार से अपनी बेटी को विदा करो, मेलिसा ने कहा। आंशी की आंखों में आंसू थे। वो शिव की तरफ बढ़ी तो शिव उससे कुछ कदम दूर हो गए। प्रीतो जी उसके पास आई और आंशी का हाथ पकड़कर कहा, इसकी नाराजगी दो दिन में दूर हो जाएगी। तुम बस हमेशा अपना ख्याल रखना और खुश रहना। अमन आंशी को लेकर अपने घर जाने लगा। उन्हें छोड़ने के लिए प्रीतो जी उनके साथ बाहर तक गई थी। अंदर घर में रॉबिल, मेलिसा और शिव जिंदल के अलावा और कोई नहीं था। खामखा क्यों इतना दिखावा कर रहे हो? इकलौती बेटी है तुम्हारी, खुश रखो उसे, क्यों उसका दिल दुखा रहे हो? रॉबिन ने शिव के कंधे पर हाथ रखकर कहा। शिव ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में बोला, तब भी बोला था और आज भी कह रहा हूँ, मेरी फैमिली और मेरी बेटी को गलती से भी हमारे बीच मत लेकर आना। नहीं लेकर आ रहा, तभी उसकी खुशियों के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत प्यारी है आंशी, वो उस लड़के के साथ खुश है, तुम्हें भी उसे आशीर्वाद दे देना चाहिए, रॉबिन ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की। शिव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चले गए। उनके जाने के बाद रॉबिन और मेलिसा भी वहां से जाने के लिए निकल गए। बाहर आकर उन्होंने देखा प्रीतो जी गार्डन में बैठी थी, जबकि अमन और आंशी वहां से जा चुके थे।